ओम शांति। आज सवेरे के बाबा की मधुर मुरली हम सभी ने सुनी। त्याग, तपस्या और सेवा। बाबा ने बहुत सुंदर तपस्या की डेफिनेशन सुनाई और उन्हीं बातों को हम अच्छे गहराई से देखेंगे कि बाबा के उन महावाक्य के पीछे भाव क्या था। अभी आप सभी ने बहुत सुंदर आदरणीय नलिनी दीदी से कर्म की गुह्य गति के विषय में सुना और जीवन को कैसे सदा उमंग उत्साह में रखना है। ब्राह्मण जीवन जब से मिला तब से ही हमारी तपस्या आरंभ हो जाती है, क्योंकि ये जीवन वरदानी जीवन है। इतना सुंदर जीवन जो प्राप्त हुआ, ईश्वर का वरदान कहो अनमोल उपहार है, और इसीलिए हम सभी प्रतिबद्ध हो जाते हैं तपस्या के लिए। तो जीवन की हर क्षण तपस्या है। योग और तपस्या में अंतर क्या है? योग एक सब्जेक्ट है। योग माना सर्व संबंधों से बाबा को प्यार से याद करना, उसको योग कहते हैं। लेकिन तपस्या माना जिसमें चारों सब्जेक्ट आ जाते हो। तपस्या अर्थात ज्ञान युक्त होकर कर्म करना, योग युक्त होकर कर्म करना, धारणा युक्त यानी युक्ति युक्त होकर कर्म करना, तभी सच्ची सेवा हम कर सकते हैं। और इसीलिए बाबा ने तपस्या के लिए हमेशा ये तीन बातें कही है कि तपस्या का आधार त्याग है। त्याग, तपस्या और सेवा। त्याग किस चीज का करना है? कोई स्थूल का त्याग नहीं करना है, चीज वस्तु का त्याग नहीं करना है, लेकिन तपस्या के लिए सूक्ष्म त्याग की आवश्यकता है। और सूक्ष्म त्याग अर्थात मैंपन और मेरेपन का त्याग है। ये जब तक त्याग नहीं है तब तक तपस्या शुरू नहीं होती है। मैंपन का त्याग तभी तपस्या आरंभ होती है। मुझे एक बहुत सुंदर उदाहरण याद आता है कि एक बार एक व्यक्ति एक महान तपस्वी से मिलने जाता है और उसका दरवाजा खटखटाता है। अंदर से आवाज आई, कौन? तो वो व्यक्ति ने अपना नाम बताया, मैं फलाना हूं। दरवाजा नहीं खुला। दोबारा उसने खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? उसने फिर से अपना नाम आदि बताया, कहां से आया वो बताया, पुनः दरवाजा नहीं खुला। थोड़ी देर और ठहरा, उसने सोचा क्या बात है। कहा आप आखिर दरवाजा क्यों नहीं खोलते, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो कहा जब तक तुम अपने आप को उसी नाम से आइडेंटिफाई करते रहेंगे कि मैं फलाना हूं, तो तुम मुझे मिल करके भी क्या करोगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा बैरियर है मैंपन का, मैं फलाना। जब तक तुमने अपने आप को ये मैंपन से उतारा नहीं है, मैंपन के वस्त्र को उतारा नहीं है, तब तक तुम मुझे मिल नहीं सकेगा। बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि मुझसे मिलने के लिए मैंपन को उतारना होगा। जब तक ये मैंपन रहेगा, मैं फलाना, तब तक बाबा से भी हमारी मिलन की अनुभूति नहीं होती है। हम सभी बाबा मिलन के लिए आए हैं, लेकिन बाबा मिलन के लिए सबसे पहली त्याग मैंपन का त्याग होता है। ये भान भी विस्मृत हो जाए तो हर घड़ी मिलन का अनुभव संभव है। कौन सी घड़ी होगी जब तपस्या नहीं होगी, मिलन नहीं होगा। इसीलिए उस मैंपन को जो सूक्ष्म में अभी तक हमें बांध के रखता है, उस मैंपन का त्याग करना होगा। कई बार कई लोग समझते हैं कि तपस्या माना 8 घंटा बैठकर योग करना, 8 घंटा बैठ के योग करना तपस्या नहीं है। इसीलिए मैंने आरंभ में कहा तपस्या एक जीवन है, क्योंकि योग में जब बैठ गए तो पता ही नहीं चलता है कि मैं पन है या नहीं है, मेरा पन है या नहीं है, कैसे पता चलेगा। योग में बैठ गए, मैंपन का उभरना, मैंपन जो आता है वो कहाँ आता है, कर्म में आता है, व्यवहार में आता है और संबंध में आता है। तो इसलिए तपस्या माना उस मैंपन को मैंने कितना जीता है ये जानना है, तो व्यवहार में जब हम आते हैं तब पता लगता है, नहीं तो पता नहीं लगता है। सारा दिन अगर मैंने अपने कर्म व्यवहार और संबंधों में मैंपन को दिखाना चाहा, मैंपन को व्यक्त करना चाहा, और उसके बाद अगर हम तपस्या में बैठे भी, तो क्या हमारा योग लगेगा, कभी नहीं लगेगा। इसलिए जब तक जीवन के अंदर तपस्या नहीं है, तब तक योग में उस तपस्या की ज्वाला को प्रज्वलित नहीं कर पाते। तपस्या एक अग्नि का स्वरूप कब ले सकता है कि जब मैंने दिनचर्या के अंदर उस बात का ध्यान रखा है और उसको जीता है, तब बैठते ही सहज तपस्या आरंभ हो जाती है। नहीं तो तपस्या नहीं, मेहनत करनी पड़ती है, युद्ध करना पड़ता है अपने आप से। ब्रह्मा बाबा ने इसीलिए हम सभी दादियों के मुख से जब सुनते हैं अनुभव, बाबा के कर्म में व्यवहार में तपस्या थी, बाबा का जीवन तपस्या था। इतनी महान हस्ती जब कोई मिलता था तो उन्हें साक्षात्कार हो जाता था, अनुभव हो जाता था। क्यों होता था? क्योंकि बाबा ने उस मैंपन को संपूर्ण रीति से समाप्त कर, तो बाबा का जीवन तपस्वी थे, महान तपस्वी। उनके कर्म में, व्यवहार में, संबंधों में उस बात को हमेशा महसूस करते थे कि बाबा ने कभी भी उस मैंपन के भाव से किसी के साथ व्यवहार नहीं किया। वहां तक कि हमारी आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी के जीवन में हमने जब देखा कि दादी ने कभी भी मैं शब्द का प्रयोग जिंदगी में नहीं किया। दादी जी को कभी अपना विचार भी रखना होता था मीटिंग में तो दादी हमेशा ये कहती थी, दादी का विचार ये है, दादी का विचार ये है, मेरा विचार है ये दादी ने कभी नहीं कहा। तो ये प्रैक्टिकल स्वरूप था और इसीलिए निमित्त भाव जितना हमारे जीवन में आता जाता है उतनी तपस्या हमारी सरल होती जाती है। दूसरी बात के तपस्या माना पांच बातों के ऊपर विजयी होना। कौन सी पांच बातों के ऊपर? तो सबसे पहले है कर्मेंद्रिय जीत होना, कर्मेंद्रिय जीत होना। दूसरा है निंद्रा जीत होना। तीसरा है संस्कार जीत होना। चौथा है प्रकृति जीत होना। और पांचवा है माया जीत बनना। ये पांच बातों पर जब जीत हो जाते हैं तब सही तपस्या हमारी जीवन से छलकने लगती है, वो तपस्वी जीवन दिखाई देता है। सबसे पहले जब कहा कर्मेंद्रिय जीत बनना, अर्थात मन बुद्धि और कर्मेंद्रिय के ऊपर संयम, इंद्रियों के ऊपर संयम, ये है कर्मेंद्रिय जीत। मन बुद्धि हमेशा इंद्रियों के पीछे भटकती है, इंद्रियों के पीछे उसका घूमना होता है, तो इंद्रियों के ऊपर संयम। इसीलिए किसी ने योग की बहुत अच्छी व्याख्या की कि योग माना क्या, तो योग माना स्वयं को सुसंस्कृत करना, अपनी इंद्रियों के ऊपर संपूर्ण अधिकार प्राप्त करना कि हमारी कर्मेंद्रियां हमारे अधीन हो, कभी वो मालिक बनकर के हमें न चलाए। दूसरा है निद्रा जीत, क्योंकि जब हम कर्मेंद्रिय जीत बनते हैं तो सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर भी जब हमारा अधिकार प्राप्त हो जाता है तो निद्रा हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। योग के समय या बाबा को याद करने जब बैठे, तपस्या करने बैठे हैं तब संपूर्ण निंद्रा के ऊपर भी जीत हो जाना। तीसरा, तभी हम प्रकृति जीत बन सकते हैं। प्रकृति दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक प्रकृति, एक बाह्य प्रकृति। क्योंकि अंदर की प्रकृति का बहुत गहरा संबंध बाह्य प्रकृति से है, इसीलिए आंतरिक प्रकृति का शुद्धिकरण। और आंतरिक प्रकृति कौन सी है हमारी? तो जिसको कहा जाता है सात्विक, राजसिक, तामसिक। कलयुग में अधिकतर हरेक की तामसिक प्रकृति है, लेकिन बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं स्वयं को ये देखना है कि तमो प्रधानता से रजो प्रधान, रजो प्रधान से सेमी सत्व प्रधान और सत्व प्रधान तक हमने कहां तक उस आंतरिक प्रकृति को बनाया है, क्योंकि वो प्रकृति बहुत गहरा रोल प्ले करती है हमारे जीवन में, हमारे कर्म में। इसीलिए जितनी शुद्ध सात्विक प्रकृति हमारी है उतनी ही बाह्य प्रकृति के ऊपर भी विजयी हो सकते हैं। अगर अंदर तामसिक प्रकृति है तो बाहर की प्रकृति भी प्रभावित करती है हर रीति से हमें दुख देने का प्रयास करेगी, लेकिन जितनी हमारी सात्विक प्रकृति होगी उतनी बाह्य प्रकृति भी सहयोगी बन जाएगी। तो तीसरा है प्रकृति जीत होना, चौथा है संस्कार जीत होना। संस्कार जीत होना माना कि जब हम अपने संस्कारों के अंदर दिव्यता भर लेते हैं और वो दिव्यता प्रवाहित होने लगती है संस्कारों के द्वारा कर्म में व्यवहार में, तब कहेंगे पुराने संस्कारों के ऊपर हमने विजय पाया है। और तब पांचवा माया जीत, सहज स्वाभाविक रीति से हम हो जाते हैं। तो अब अपने आप को देखना है कि तपस्या सही स्वरूप से ये पांचों के ऊपर जब हम विजयी हो जाते हैं, ये है तपस्या। पुरुषार्थ इसी का नाम है कि जब हम एक तपस्वी जीवन वाले हैं तो हमारा पुरुषार्थ क्या है, तो प्रैक्टिकल जीवन के अंदर ये पांचों बातों के ऊपर विजयी होना। तीसरा तपस्या का भावार्थ, पहला हमने देखा त्याग ही आधार है तपस्या का, दूसरा हमने देखा ये पांचों बातों के ऊपर जीत प्राप्त करना, ये तपस्या है। तीसरा, अगर कोई भी तपस्वी रूप को हम सामने ले आए, जैसे ध्रुव को अगर हम ले आए, तो ध्रुव ने जब तपस्या की तो कौन सी बात थी उसकी तपस्या में, ऐसा क्या था, क्या था? कोई भी तपस्वी को अगर ले लिया जाए तो हर तपस्वी के अंदर तीन बातें देखने को मिलती है। पहली बात कि एक बेहद की वैराग्य वृत्ति उनके अंदर आती है, वैराग आ जाता है, और वैराग आने कारण वो हमेशा भीड़ से अपने आप को अलग ले जाते हैं। कोई गुफा में ले जाएंगे, कोई जंगल में ले जाएंगे, कोई पहाड़ों पर चले जाएंगे, माना जहां भीड़ से अपने आप को दूर कर देते हैं, वैराग्य आ गया। तो इसी तरह बाबा हमें स्थूल वैराग्य की बात नहीं बताते हैं, रहना तो हमें अपने परिवार के बीच में ही है, लेकिन परिवार के बीच में रहते हुए भी वैराग माना बेहद की एक उपरांता, न्यारा और प्यारा हो जाना। रहना भी है लेकिन घर में रहते हुए भी एक ऋषि की तरह रहना है, ऋषि की तरह। तो इसका नाम है तपस्या, बेहद की वैराग्य वृत्ति। क्यों वैराग्य क्यों चाहिए? क्योंकि यही परिवर्तन का आधार है। जो हमारे अंदर एक परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होती है वो तभी होती है जब वैराग आता है, उपराम होने लगते हैं, न्यारा होने लगते हैं, तब परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर अटैचमेंट है तो परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ नहीं होती है। इसीलिए स्थूल की वैराग्य की बात नहीं है, लेकिन घर में रहते हुए भी एक राज ऋषि के समान, ऋषि की तरह रहना है, ये है तपस्या। कई लोग गुफाओं में चले जाते, हमें कोई स्थूल की गुफा में नहीं जाना है, लेकिन बाबा हमेशा कहते ये ब्रुकुटी की गुफा में चले जाओ तब तपस्या आरंभ होगी। तो ब्रुकुटी की गुफा में जाना माना आत्मस्थिति में स्थित हो जाना। जितना आत्मभाव में आकर हम कर्म करेंगे, प्यार से, शांति से, आनंद से, खुशी से, ये आत्मा के गुणों के आधार पर हमारा कर्म होगा, तब हम राज ऋषि कहलाएंगे। रहना उन्हीं के बीच में है, लेकिन आत्मा के सातों गुणों का प्रवाह कितना हमारे कर्म में, व्यवहार में, संबंध में है, यह है बेहद की वैराग्य वृत्ति। मोह के आधार पर नहीं, प्रेम के आधार पर कर्म हो, खुशी के आधार पर हो, आनंद के आधार, तो लाइटनेस की फीलिंग आएंगी, हैवीनेस की फीलिंग नहीं आएंगी कर्म करते हुए। जब मोह के वश करते हैं और वहां अगर किसी ने उल्टा कर दिया, हमारे हिसाब से नहीं किया, तो भारीपन भी हो जाएगा, व्यर्थ संकल्प भी चलेगा और हमारी स्थिति नीचे आ जाएगी। इसलिए गुफा में जाना है, यानी अंतर्मुखता की गुफा हो या आत्मस्थिति की गुफा में स्थित होकर के कर्म करना, ये है तपस्या का बेस, ये तपस्या का बेस। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति यही परिवर्तन की प्रक्रिया को आरंभ करते हैं। दूसरा, कोई भी तपस्वी को जब हम देखते हैं तो उन तपस्वी के जीवन में क्या दिखाई देता है, एक दृढ़ता संपन्न अभ्यास। जैसे कहा, ध्रुव ने टांग पर खड़ा होने का प्रतिज्ञा कर लिया, दृढ़ संकल्प ले लिया और दृढ़ संकल्प लेकर के एक टांग पर खड़ा हो गया, तो दृढ़ता संपन्न अभ्यास ये है तपस्या। बाबा हमें एक टांग पर खड़ा होने के लिए नहीं कहते हैं, या कोई ऐसे स्थूल में प्रतिज्ञा करने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्पधारी होने के लिए तो कहते हैं। जब हम दृढ़ता के साथ कोई भी संकल्प को ले लेते हैं तो हमारी सही तपस्या आरंभ हो जाती है। हम बाबा के घर में जब आते हैं, दृढ़ संकल्प जरूर करते हैं, बाबा के कमरे में जाएंगे, चार धाम में जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे संकल्प आते हैं, और उसमें भी विशेष अगर 18 जनवरी का दिन हो या शिवरात्रि का दिन हो तो विशेष बाबा के कमरे में जाकर के हम क्या करते हैं, अच्छे अच्छे संकल्प लेते हैं। लेकिन कितना दिन वो संकल्प चलता है, कितना दिन वो संकल्प चलता है, थोड़े दिन, और थोड़े दिन के बाद क्या हो जाता है, वो संकल्प हमारा ढीला हो जाता है। फिर कहते बाबा के कमरे में अमृत वेले बैठ के संकल्प किया तो भी पावरफुल नहीं हुआ, हमारे में तो दृढ़ता है ही नहीं, संकल्प बहुत कमजोर है। संकल्प कमजोर नहीं है आपके, आप में दृढ़ता की शक्ति है। आप कहेंगे बहन जी आपको कैसे पता, हमारे में दृढ़ता नहीं है ना, है दृढ़ता। देखो बाबा के ज्ञान में जब आए और जैसे ही आप ने ये दृढ़ संकल्प लिया कि भाई मुझे नियम मर्यादाओं को पालन करना है, और आपने सबसे पहले प्याज लहसुन को छोड़ा ना सबने, कि है कोई खाने वाला अभी भी बैठा है, कोई नहीं ना। अच्छा तो आज अगर कोई आपको कितना भी फोर्स करे खिलाने के लिए, खाते हैं चलो खा ले वे आज, नहीं क्यों, तो दृढ़ संकल्प है ना आपका, कौन कहता है नहीं आप में दृढ़ संकल्प, दृढ़ता है। आज कोई कितना भी खिलाने का प्रयत्न करे तो भी आप नहीं खाते, तो दृढ़ संकल्पधारी हुए, खुद के लिए ताली तो बजाओ। तो इसीलिए कहा कि दृढ़ संकल्पधारी तो हो आप। अच्छा आज आपको कोई, आपने नियम ले लिया कि चलो भाई रोज क्लास करना है तो जाते हैं ना क्लास में, भले घर वाले 10 बार आपको रोज रोज क्या है जाना, एक दिन गए तो ये टीवी पर देखेंगे तो नहीं चलेगा क्या, कहते हैं ना फिर भी जाते हैं ना, क्यों जाते हैं। तो है ना दृढ़ संकल्प, एक दिन भी नहीं गया तो ऐसा लगता है बहुत कुछ मिस कर लिया, भले टीवी पर भी देखते हैं लेकिन फिर भी सेंटर पर जाने का एक दृढ़ संकल्प है आपका, तो रोज जाते ही है। तो इसीलिए बहुत दृढ़ता की शक्ति है, आज आपने नियम मर्यादा अमृत वेले उठने का या सुबह सुबह स्नान करने का कोई कितना भी कहे आप छोड़ देते हो उस नियम को। लोगों को एक दिन उपवास रखते तो भी इतनी ताकत आ जाती, नवरात्रि के 9 दिन उपवास रखते तो भी ताकत आ जाती। आप लोगों के अंदर इतना आपने सालों का इतने सालों का उपवास रखा तो ताकत नहीं है क्या? बहुत ताकत है, लेकिन फिर भी हमारा दृढ़ संकल्प ढीला क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्योंकि कहीं न कहीं हम सूक्ष्म में आलस और अलबेलेपन को अपना साथी बना लेते हैं। आलस और अलबेलेपन को साथी बना देते हैं। इसलिए बाबा की एक मुरली याद आती है कि ये भी लिस्ट निकालो कि कितने प्रकार के अलबेलेपन को पाल के रखा है, जिसको बाबा हमेशा कहते हैं ये आलस और अलबेलेपन ये क्या है? डनलप के तकिए है जो हमने इधर लगाए इधर लगाए इधर लगाए, है ना, आराम देने के हिसाब से अपने आप को डनलप के तकिए लगा करके हम चल रहे हैं। अब जैसे ध्रुव ने दृढ़ संकल्प ले लिया कि एक टांग पर मुझे खड़ा होना है, उसने ये अंदर में सोचा कि भाई मैं दिन में तो खड़ा रहूंगा, रात में नहीं रहूंगा, रात में मैं सो जाऊंगा। लिया डनलप का तकिया? नहीं लिया। अच्छा ये लिया कि बारिश आएगा तो मैं अंदर जाके खड़ा रहूंगा, बारिश आएगी तो बाहर नहीं खड़ा रहूंगा, ये डनलप का तकिया लिया? नहीं। तो इसीलिए दृढ़ संकल्पधारी बनना माना उस संकल्प के प्रति जागरूक रहना, और जागरूक रहना माना कहीं पर भी कोई भी आलस और अलबेलेपन के वश डनलप के तकिए नहीं लगाना। जैसे ही हमने बाबा के कमरे में दृढ़ संकल्प किया कि भाई अमृत वेला रोज उठेंगे, फिर रात को 2 बजे से मेडिटेशन किया और सारा दिन टाइम नहीं मिला रेस्ट करने का, तो दूसरे दिन क्या हो गया? फिर कहते कल 2 बजे से उठे थे ना, अब तकिया लगा दिया ना, कि 2 बजे से उठे थे, सारा दिन रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला तो आज कैसे उठ पाएंगे? तो दूसरे दिन गाड़ी गड़बड़ पटरी से नीचे उतर गई, तो दृढ़ संकल्प से नीचे उतर गई। तो इसीलिए क्योंकि हम उस संकल्प के प्रति जागरूक नहीं रहे, अटेंशन में नहीं आए, हमने जो दृढ़ संकल्प लिया है उसके प्रति अटेंशन में तो रखो। तो दृढ़ता संपन्न अभ्यास करना, उस संकल्प के प्रति विशेष अटेंशन रखना और अटेंशन के पहरेदारों को टाइट कर देना, ताकि कहीं पर भी वो आलस अलबेलापन करके मुझे समझाने का प्रयत्न न करे कि इतना तो चलता है ना, कौन रोज उठता है बताओ ना। अब ये संकल्प ले लिया तो क्या होगा, दूसरे दिन उठेंगे, सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट सो जाते हैं, फिर जाते हैं, और 5 मिनट का क्या होता है, 5 बज जाता है, सीधी 5 बजे, अरे ये अमृत वेला तो मिस ही हो गया, क्योंकि 5 मिनट का गद्दा लगाया, 5 मिनट का आलस करने गए तो क्या हुआ, 5 बज गया और अमृत वेला नींद में ही चले गए। तो इसीलिए कहते हैं बाबा के कमरे में दृढ़ संकल्प लिया तो भी अमृत वेला मिस हो जाता है। कारण क्या? कि डनलप के तकिए हम लगाना शुरू कर देते हैं और कोई न कोई प्रकार के आलस्य या अलबेलेपन के वश हो जाना वो हमारे दृढ़ संकल्प को तोड़ने के लिए निमित्त बन जाते हैं। तो संकल्पों पर अटेंशन, संकल्पों की क्वालिटी पर अटेंशन, कि कोई भी कमजोर संकल्प मुझे आकर के कमजोर न करे। कमजोरी तो अंदर ही है ना, इसीलिए एक होता है बड़े बड़े विकार, दूसरा होता है अवगुण, और तीसरी होती है कमजोरी। ये 3 चीजें होती हैं। बड़े बड़े विकारों को तो हमने छोड़ दिया, अवगुणों को भी छोड़ने का पूरा पुरुषार्थ लगे हुए हैं, लेकिन जो कमजोरी है ना, कमजोरी हमें कमजोर कर रही है। कमजोरी कौन सी है, कौन सी कमजोरी है? कहीं हिम्मत की कमी है तो वो कमजोरी हो गई। कमजोरी कम जो कमी को उत्पन्न करती है, तो हिम्मत की कमी, सत्य को सामना करने की कमी, ये कमी हमें कमजोर कर रही है। ये कमजोरी है जो हमें अंदर ही अंदर कमजोर करती है, खोखला कर। इसलिए बड़े बड़े विकारों को हम छोड़ने में कामयाब हो जाते, अवगुणों के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ये कमी, कमजोरी, कमी जो है वो कमजोर बना देती है हमें, और वो कमजोर कर देती है तो माया का आने का द्वार खुल जाता है। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी एक बार, कि कोई भी छोटी कमी को ये मत समझना, इतनी कमी है ना ये तो अंत तक हम भर देंगे, लेकिन यही छोटी सी कमी ये माया के आने का द्वार बन जाएगी, और आपका अपना परीक्षा का पेपर लेने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए यही कमी हमारे सामने खड़ी हो जाएंगी। ये मत समझो कि ये छोटा है, ये छोटा नहीं है, मोटा है, है ना, समय पर बहुत मोटा हो जाता है। इसीलिए विकारों को छोड़ना आसान है, अवगुणों को छोड़ना आसान है, लेकिन कमी को भरना ये जरूरी है, नहीं तो वही कमी द्वार खोल देंगी, है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी हमारा समय जो चल रहा है, कौन सा समय है, परीक्षाओं का। 2017 से आपने देखा होगा विघ्न बढ़ गए, परीक्षाएं बढ़ गई, समस्याएं बढ़ गई, बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, पेपर बढ़ गए, शरीर के हिसाब किताब के पेपर भी बढ़ गए या न कम हो गए। 2017 से सब बढ़ गए, सारे पेपर बढ़ गए, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पेपर, पेपर भी हम खुद फाइनलाइज करते हैं, है ना, दुनिया में तो दूसरे पेपर सेट करते हैं, यहाँ तो पेपर भी हम खुद, एग्जाम देने वाले खुद, पेपर सेट करने वाले हम खुद, चेकिंग करने वाले हम खुद, और पास या फेल सर्टिफिकेट देने वाले भी हम खुद। अब बताओ, पेपर के एग्जामिनेशन हॉल में बैठने वाले भी हम ही हैं, पेपर सेट करने वाले भी हम ही हैं। इसलिए बाबा ने कहा आप सब कुछ जानते हो, सारा क्वेश्चन पेपर क्या होने वाला, अंतिम क्वेश्चन पेपर क्या आने वाला है वो भी आप जानते हो, वो भी सेट करते हैं ना, तो हम खुद ही सेट करते हैं। जहां जहां अपनी कमी कमजोरी आई वो पेपर लेगा जरूर, वही पेपर का स्वरूप बनेगा। तो पेपर सेट करने वाले भी हम खुद, चेकिंग करने वाले भी हम खुद, बाबा चेकिंग नहीं करता है, हम खुद चेकिंग करते कि आज ये कमी के वश हो गए, फेल हो गए तो पास हुए या फेल, पास होंगे तो बड़ी खुशी होंगी, आज हमने, हमारे सामने पेपर जो है हम पास हो गए, बिल्कुल हम निद्रा जीत बन गए, अमृत वेले संकल्प आया तो भी हमने अपने संकल्प को क्या कर दिया, निकाल करके खड़े हो गए अमृत वेला के लिए। तो जिस दिन पास होते उस दिन खुशी भी होती है, खुद महसूस करते हम पास हो गए, तो हम रिजल्ट भी खुद को देते हैं, पास हो गए कि आज फेल हो गए। तो बाबा न पास करता है न फेल करता, हम खुद ही खुद को क्या करते हैं, पास करते या फेल करते हैं। तो एग्जामिनेशन देने वाले भी खुद, एग्जामिनेशन लेने वाले भी हम खुद, यानी पेपर सेट करने वाले भी हम खुद, और पास या फेल का सर्टिफिकेट देने वाले भी हम खुद। ड्रामा की कितनी ये विचित्र बात है, कितनी विचित्र बात है, क्यों? क्योंकि अगर दूसरा कोई हमें एग्जामिनेशन में पास या फेल करता ना तो हमें फीलिंग आ जाती, हम सोचते नहीं नहीं हम पास है, इसने फेल कर दिया हमें जानबूझकर, पार्शियलिटी कर ली। अगर भगवान भी ये पास या फेल का सर्टिफिकेट देता तो हम भगवान को भी कहते ये पार्शियलिटी कर रहे हैं, है ना। बाबा भी पार्शियलिटी कर, लेकिन बाबा ने इसीलिए हमें ही सौंप दिया, तुम ही खुद को पास करो या फेल करो, तो हम दोष किसके ऊपर डालेंगे, डाल सकेंगे किसी के ऊपर? नहीं डाल सकेंगे। इसलिए ड्रामा के अंदर युक्ति इतनी वंडरफुल है, कोई एग्जामिनेशन आपकी लेता नहीं, आप खुद लेते हैं। कोई पेपर सेट करता नहीं, आप खुद सेट करते हैं कमी कमजोरी के कारण। को एग्जामिनेशन देने वाले भी आप खुद, और पास और फेल करने वाले भी आप खुद। आप किसको दोष देंगे बताओ, किसको दोष देंगे? कितनी विचित्र बात है। इसलिए बाबा किसी को पास या फेल नहीं करता, आप खुद पास होंगे तो पास हुए तो ऑनर वाले की लाइन में चले जाएंगे, फेल होंगे तो खुद ही उस लाइन में चले जाएंगे, अफसोस करेंगे, पश्चाताप करेंगे, हाँ? लेकिन फिर क्या कर पाएंगे। इसीलिए ड्रामा की ये वंडरफुल बात है। इसलिए दृढ़ संकल्पधारी बनकर उस कमी कमजोरी के ऊपर क्या करना है, विजयी बन जाना है। कमियों को भर देना ज्यादा उचित रहेगा समय से पहले। समय से पहले क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, यही पुरुषार्थ है, यही पुरुषार्थ। और तीसरी बात के तपस्या माना एकाग्रता पूर्ण अभ्यास करना, एकाग्रता के साथ, और उसमें भी मन और बुद्धि की एकाग्रता बहुत जरूरी है। मन भटकता है, ये कईयों की शिकायत रहती है, मन भटकता है। कहाँ भटकता है, कहाँ भटकता है? मन तीन चीजों में भटकता है। पहला व्यर्थ में भटकता है, दूसरा संबंधों में भटकता है, और तीसरा इच्छाओं में भटकता है। ये तीन जगह मन भटकता है। या तो कोई इच्छा उत्पन्न हो जाती है, ये चाहिए वो चाहिए, तो उसके पीछे मन भटकता है, या तो कोई ना कोई संबंधों में भटकता है, या तो कोई ना कोई व्यर्थ में भटकता है। तो ये तीन चीजों में मन भटकता है। अब बाबा ने व्यर्थ को समाप्त करने के लिए हमें समर्थि दी है, समर्थ विचार दिए है, ज्ञान इतना समर्थ दिया है तो उस व्यर्थ को मिटा सकते हैं। दूसरा जो संबंधों में भटकता है, तो बाबा ने कहा सर्व संबंध मेरे साथ जोड़ दो, कह दिया सर्व संबंध अगर बाबा के साथ जोड़ देंगे तो अगर मन को आदत पड़ी हुए संबंधों में भटकने की, तो बाबा के साथ के संबंधों में भटके कोई बात नहीं, पुण्य ही है, उसमें जमा का खाता ही होगा। और तीसरा इच्छाओं में भटकता है, तो ये बात हमें स्मृति रहे, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने। अप्राप्त नहीं वस्तु, तो हम किसके पीछे जा रहे हैं, किसके पीछे अपने मन को भटका रहे हैं? तो मन को भटकने से एकाग्र करने के लिए ये तीन बातों को क्या करो, हाँ? मोड़ दे दो, ताकि उसमें हमारी शक्ति क्षीण न हो। और बुद्धि कहाँ भटकती है, बुद्धि को स्थिर करने का आधार क्या है, एकाग्र करने का आधार क्या है? तो आदरणीय दादी जानकी जी हमेशा ये बात कहती है कि बुद्धि के लिए तीन बातें, क्लीन, क्लियर और कमिटेड, प्रतिबद्ध। क्लीन हो, स्वच्छ हो, बुद्धि को साफ रखो, बुद्धि में मैलापन न रखो। दूसरा क्लियर, हाँ, एक तो स्वच्छ और एक स्पष्ट। तो बुद्धि हमारी स्पष्ट हो, फोकस हमारा क्लियर हो, और तीसरा कमिटेड, प्रतिबद्धता, तभी आ जाएंगे। इसीलिए गीता में भी बुद्धि योग को, यानी स्थिर बुद्धि के लिए, स्थित प्रज्ञ दूसरा अध्याय, स्थित प्रज्ञ होने के लिए विशेष बुद्धि को भटकने से बचाना है। तो ये बात गीता के अंदर भी कही गई है कि बुद्धि को भटकने से बचाना हो, योग परायण बुद्धि बनाना हो, तो स्थिरता उसमें लाने की आवश्यकता है। और स्थिरता लाने के लिए क्लीन, क्लियर और कमिटेड जितनी हमारी बुद्धि रहेगी उतना हमारी बुद्धि भटकनी बंद होगी। दूसरा, बुद्धि को स्थिर रखने के लिए निश्चयात्मक बुद्धि बनना आवश्यक है। तीन बिंदी का फुल स्टॉप लगाओ। तीन बिंदी का फुल स्टॉप लगते ही बुद्धि का भटकना बंद होगा। निश्चय बुद्धि बन जाओ, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा। ड्रामा हर पल कल्याणकारी है, ये निश्चय बुद्धि जब बन जाते हैं कुछ भी बुरा नहीं हुआ, कुछ भी बुरा नहीं हुआ। जब ये अंदर में आ जाता है तो बुद्धि हमारी स्थिर हो जाती है। ये कहने मात्र ना हो लेकिन ये हमारी स्थिति में आ जाए तब बुद्धि हमारी भटकना बंद हो जाएगी। अब अगर ज्ञान क्लियर है बुद्धि के अंदर, ज्ञान की स्पष्टता है, तो बुद्धि भटकेगी नहीं। लेकिन ज्ञान अगर स्पष्ट नहीं है तो अनेक प्रकार के सवाल उत्पन्न हो जाएंगे, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, ये खड़े हो जाएंगे प्रश्न। दादी गुलजार हमेशा बहुत अच्छी बात कहती है कि हम सभी ब्राह्मण कौन है, हंस है के बगले हैं, हंस है ना, हंस है ना सभी, तो हंस क्या चुगता है, मोती चुगता है, और बगले कंकड़ चुगते हैं, गंध चुगता है। तो हमारी खुशी गायब कैसे होती है, तो जब ये पांच सवाल आ जाते हैं ना, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, हा? किसने किया, ये पांच सवाल का करने वाला कौन होता है, कौवा। हम कौन है, हंस है के कौवे हैं, हंस है तो जब हंस है तो कौवे की चाल क्यों चल रहे हैं। जब का करना शुरू करते हैं तो हम कौन हो गए, हंस रहे, हंस नहीं रहे, तब हम कौवे हो गए। अगर हंस कौवे की चाल चलने गया तो सुखी होगा के दुखी होगा, दुखी हो जाएगा। तो हम सभी हंस है, मोती चुगने वाले, ज्ञान के मोती चुगने वाले, ये काव 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 करने वाले है नहीं है। तो आज के बाद हंस है, हंस कौवे की चाल नहीं चलेगा पक्का। तो निश्चयात्मक बुद्धि, क्वेश्चन खड़ा नहीं करना, जब ऐसी हमारे बुद्धि हो जाती है तो एकाग्रता सहज, और मन बुद्धि की एकाग्रता जितनी हम अंदर में डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे, तो तपस्या हमारी बहुत सुंदर होने लगेगी। तो ये है तपस्या, इसलिए कहा तपस्या एक जीवन है, तपस्या कुछ घंटे का नहीं है, एक जीवन है। और ये जीवन, तपस्वी जीवन प्राप्त करना, ये भी सौभाग्य है। कल्प में जिन्हें भी ये सौभाग्य मिले, यही तो महान ऋषि मुनि हुए है ना, यही तो महान ऋषि मुनि हुए। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य संगम युग पर बाबा ने हम बच्चों को दिया है। हम भाग्यशाली है कि हमें ये सौभाग्य मिला है तपस्या करने का। बाकी तो दुनिया में लोग तपस्या नहीं कर पाए, इतना संयम नहीं जीवन के अंदर, इतना जीवन के अंदर निखार नहीं ला सके। तो हमारा जीवन, हमारी तपस्या आत्मा में ऐसा निखार ले आती है जो आत्मा एकदम चमकने लगती है, स्वर्ण हो जाती है, सोना बन जाती है। ठीक है ना, ओम शांति।
तब तब कर निखरेगा जीवन तप कर बनते देव महान तप से मिलता जीवन का सुख तप से मिलता जीवन दान तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता तपस्या से जीवन में आती है मधुरता तपस्या से जीवन में आती है मधुरता तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता सभी के दिलों की दुआ है तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है तपस्या सभी के दिलों की दुआ है तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है जीवन भी क्या है योग साधना से आए दिल में उदारता योग साधना से आए दिल में उदारता तपस्या ही जीवन में लाती मधुरता तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता संबंधों का रिश्ता तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता तपस्या से जीवन में आती है मधुरता तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।